वो चाय की चुस्की लेते हुए मनाल के सामने शांत लेकिन बेहद गहरी आवाज में बोला, देखो मैं ज्यादा लाग लपेट में बात नहीं करूंगा, जो कहूंगा साफ साफ कहूंगा। वो मनाल के सामने एक ऐसा ऑफर रखने वाला था जिससे उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती थी। इस वक्त तुम्हें और तुम्हारी फैक्ट्री दोनों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारी ज्यादातर डील्स कैंसिल हो रही हैं, सप्लाई टाइम पर नहीं हो पा रही है, ना नए टेंडर मिल रहे हैं ना पुराने बच रहे हैं, मजदूर हड़ताल की तैयारी में हैं, रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा, और तुम्हारे पापा की हालत भी जस की तस है, कोई सुधार नहीं। फिर वो कुछ पल रुका और गहरी नजर से मनाल को देखा। इस सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो ये सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। मनाल अब पूरी तरह से चौंक चुकी थी। अब तुम सोचोगी कि तुम मुझसे शादी क्यों करोगी, पर ये तुम भी जानती हो कि अगर तुम्हारी फैक्ट्री मेरे नाम से जुड़ती है, मेरे बिजनेस से जुड़ती है, तो सब कुछ बदल जाएगा। सप्लायर्स भी भरोसा करेंगे, इन्वेस्टर्स भी लौटेंगे और तुम्हारे दुश्मन भी सोचेंगे दो बार। और अगर फैक्ट्री बंद होती है तो तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तुम जानती हो वो इससे कितने मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। सोच लो, जवाब मुझे इस नंबर पर दे देना। मनाल अब तक उसे देखती रही थी लेकिन अब उसकी आवाज में सख्ती आ गई। आपको इससे क्या फायदा होगा? आप मेरी फैक्ट्री क्यों बचाना चाहते हैं? मेरे पापा की सेहत से आपको क्या लेना देना है? आदित्य एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे ना तुम्हारी फैक्ट्री से मतलब है ना तुम्हारे पापा की सेहत से। अगर कुछ है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कॉलेज के वक्त तुम मेरा क्रश थी, तब तुमने मुझे नजरअंदाज किया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक रात नहीं, शायद कई रातें बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बिना शादी के तुम कभी नहीं मानोगी, इसीलिए मैंने ये ऑफर बनाया है जिसमें तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। उसकी नजरों की गर्मी अब मनाल के चेहरे को चीर रही थी। वो अपनी नशीली आंखों से उसे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी चीज का हक जता रहा हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना। तुम्हारे हालात वैसे ही बहुत खराब हैं और अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इतना कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद मनाल वहीं बैठी रही। उसके अंदर एक आग थी, खुद के खिलाफ, हालात के खिलाफ और उस आदमी के खिलाफ जिसने उसकी मजबूरी को अपना हथियार बना लिया था। वो थकी हारी जब रात को घर पहुंची तो उसकी माँ ने खाना पूछने पर वो चुपचाप मना कर गई, दरवाजा बंद किया और अकेली अपने कमरे में बैठ गई। उसने जो कहा वो गलत नहीं था, अगर उसकी फैक्ट्री मेरे नाम से जुड़ जाती है तो सब कुछ बदल सकता है। मगर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, सिर्फ मजबूरी में शादी? जिस लड़के से मनाल की सगाई तय होने वाली थी उसने भी उसका साथ नहीं दिया, एक बार मिलने आया और फिर गायब हो गया। उसने मनाल के फोन नहीं उठाए। बाद में मनाल ने उसे किसी और लड़की के साथ घूमते देखा और कुछ ही दिनों में उसकी सगाई की खबर भी आ गई। उस दिन वो बहुत रोई थी। उसके बाद से किसी ने उसका साथ नहीं दिया सिवाय उस आदित्य के, जो साथ देने के बदले कीमत मांग रहा था। अगली सुबह ही उसका कॉल आ गया, तो बोलो शादी कब करनी है, कब आऊं तुम्हारे घर? मनाल ने भारी मन से कहा, जब आप चाहें, मैं शादी के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, वेट करो मेरी, उसने कहा और कॉल कट कर दिया। शाम को वो अपने माता पिता के साथ मनाल के घर पहुंच गए। मनाल को उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस तरह सीधे आकर उसका रिश्ता मांगेगा। आदित्य की माँ ने मनाल की माँ से कहा, हम तो कब से इसके पीछे पड़े थे शादी के लिए, अब इसने खुद बताया कि इसे मनाल पसंद है, तो हमें क्या एतराज, बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो शादी जल्दी कर देनी चाहिए। मनाल की माँ चुप हो गई, उन्हें अपने कोमा में पड़े पति की याद आई। मनाल के डैड की गैर मौजूदगी में इतनी जल्दी फैसला करना ठीक है या नहीं, इस बात पर कुछ कह पाना मुश्किल था। फिर आदित्य के पापा बोले, हमें मालूम है कि मनाल के पापा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, इसलिए हम कोई भव्य प्रोग्राम नहीं करेंगे, सादा और सम्मानजनक कार्यक्रम रखेंगे। क्या आदित्य सचमुच मनाल की मजबूरी का फायदा उठा रहा है? क्या ये रिश्ता सिर्फ एक सौदा है या फिर कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ और भी है?